शक्ति विग्रहाय नमस्ते गौरवाणी मूर्ते दिन तारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत महाप्रभु संक्षेप जीवनी नारा छे रूपा दे सपड़ा है ना सुन है नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सतसस्मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का विरह तिथि आज ही के दिन वो अप्रकट हुए थे। आज पंचमी है ना, पंचमी तिथि के दिन, और पंचमी के दिन ही वो आविर्भूत हुए थे, और उसी तिथि को आज और अभी आने वाले माघ महीने में वो उनकी आविर्भाव तिथि होगी, शुक्ला पंचमी की, और आज है अग्रहायण, पौष मास, पौष हो गया ना, पौष महीने का एक महीने बाद ही वो आएगी। उनका आज ही के दिन आविर्भाव हुआ है, तिरुभाव। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के गृह में आविर्भूत हुए थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु के और कृष्ण दोनों के परिकर हैं, नित्य सिद्ध हैं। ये भक्ति रूपी भागीरथ के, भागीरथी गंगा को लाने वाले ये महापुरुष हैं। जब भक्ति को कुछ लोगों ने व्यवसाय बना लिया और गोस्वामी और ब्राह्मणों का ही एकमात्र भोग्य विषय बना लिया लोगों ने, और महाप्रभु के नाम पर तरह तरह के भोगवाद प्रचलित हो रहे थे, सखी भेकी स्मार्ट जाति गोसाई बाउल बाउल करता सहजिया नेड़ा दरबे साई करता भाजा इत्यादि कितने सब अपर संप्रदाय निकल रहे थे। उसी समय में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, और उसके बाद में उनके पुत्र के रूप में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी विमलानंद विमला प्रसाद ये प्रकट हुए। यदि ये दोनों महापुरुष नहीं आते तो शुद्ध भक्ति कुछ नहीं होता। आज भी उन लोगों के अप्रकट होने पर फिर ये सब समाज फिर वैसा ही होने जा रहा है, लगभग वैसा ही अब समय तैयार हो रहा, जबकि भक्ति देवी वैसे ही फिर लोग सहजिया सखी भेकी आउल बाउल इत्यादि होंगे। पहले तो 13 थे, अब गुरु महाराज जी ने गिनाए जो 13 थे 39 हो गए, कुछ दिनों के बाद में न जाने कितने हो जाएंगे। हम लोगों में भी हम देख रहे हैं कैसा परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। हम लोगों ने देखा था कैसा वैराग्य, कैसा वैराग्य। उस समय हम लोगों का कभी किसी के वैष्णव के पैरों में मोजा नहीं देखा, ऐसे स्वेटर नहीं देखे, ऐसी चादर नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। बस यहां तक कपड़े, कोई सुख स्वाच्छंद नहीं, बस कंबल, भेड़ वाले कंबल, बस यही देखा। और सवेरे कैसे आरती के साथ में आरती में आते थे वो लोग, रूपा जी के अप्रकट होने पर भी देखा था ये सब चीजें। और कितने सादगी के साथ में रहते थे, सब कुछ रहने पर भी साफ अन्न या एक पतली लंबी सी दाल बहुत। और आज उसकी तुलना में हम लोग देखते हैं कि जीवन का मान कैसा हम लोगों का बढ़ गया, भक्ति कम रही और ये सब चीजें बढ़ रही, शरीर की भूख बढ़ रही, आत्मा की भूख कम रही। यदि ऐसे ही रही कुछ दिनों में, अभी देखते हैं कुछ दिनों के बाद में भक्ति एकदम चपट हो जाएगी, जैसे उन लोगों के समय में थी। ये महापुरुष लोग आए माया के तालाब में, सरोवर में एक कंकड़ी फेंक दी तो काई इधर उधर थोड़ी सी दूर हो गई, और फिर जब उसका प्रभाव दूर हो गया तो फिर काई सर्वत्र छा गई। हम ठीक वैसा ही देख रहे हैं, अपने को भी वैसा ही देख रहे हैं उन लोगों की तुलना। उनका ज्ञान वैराग्य विचार कैसा था और हम लोगों का क्रमशः कैसा चला जा रहा है नीचे। तभी हम लोगों का मन प्रसन्न रहेगा कहाँ से, जहाँ पर शुद्ध भक्ति रहेगी वहीं पर प्रसन्न रहेगा। तो जिस समय उस जगत की ऐसी दुर्वस्था थी, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण इत्यादि जब चले गए, उस समय हम लोगों के गौड़ीय वैष्णव युग में एक अंधकार युग आया। उसमें वैष्णव लोग हुए कुछ और कुछ लोग भजन भी करते थे, किंतु जैसे अब हम लोगों का आरंभ हुआ है, कोई मरता है मथुरा में तो गौड़ीय मठ के जो बाबा जी हैं लोग हैं उनको बुला लाओ। अभी तक तो बहुत कम जाते हैं हम लोग, बहुत नहीं के बराबर, किंतु धीरे 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 वही पेशा हो जाएगा, पैसा आने लगा उससे। और लोग इसको एक सामाजिक क्रिया बना लेंगे, कीर्तन वैष्णव से कीर्तन करवाना एक ही है और ये भी करने लगेंगे। ऐसे ही हो रहा था उस समय, केवल लोग मरने पर जाति वैष्णव लोग, जाति वैष्णव, उस समय जाति से वैष्णव होते थे, इस तरह से नहीं। और वो लोग जा करके हरे कृष्ण हरे राम कर देते और कुछ उनको मिल जाता, फिर अपने घर में आ जाते, गृही लोग रहते। ऐसे जाति वैष्णव बन गए थे। और जितने प्रकार के अधर्म हो सकते हैं उनमें होता था व्यभिचार। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा जैसे ये तो वैष्णवता एकदम महाप्रभु का विचारधारा ही लुप्त हो गया, क्या करना चाहिए, बड़े चिंतित थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रयास किया खूब, किंतु जैसा होना चाहिए था प्रचार नहीं हुआ। उन्होंने नगर नगर में गांव गांव में गए और हरिनाम नाम का हाट आरंभ किया। गांव गांव में चार पांच छह आदमियों की, धार्मिक लोगों की एक कमेटी बना दी और उनके द्वारा हरि सभा कायम किया। उसमें प्रति रविवार को या किसी समय में हरिनाम कीर्तन और गांव में वो फेरी लगा, ऐसा प्रचार किया। धीरे 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 वो बंगाल तक ही, कुछ गांव में ही, नवद्वीप के आसपास, कलकत्ता या और कुछ समय में सीमित था। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कुछ सज्जन तोषिनी पत्रिका बाहर की, कि सज्जन संगिनी तोषिनी, और उसमें महाप्रभु के चरित्र, चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथ छपवाए और सब प्रकाशित धीरे धीरे होने लगा। धीरे धीरे वैष्णव की मंडली बनाई, नवदीप धाम को भी प्रकाशित किया, किंतु अच्छी तरह से समाज के सभ्य व्यक्ति लोग अभी इसको ग्रहण नहीं कर सकते। सहजिया वैष्णवों की ही अधिक चलती थी। प्रभुपाद जी ने जगन्नाथपुरी में आविर्भूत होकर के वहीं से आरंभ किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनकी जहाँ जहाँ ट्रांसफर उनका हुआ, बदली हुई, वहाँ वहाँ गए। वहाँ उनके साथ में भक्त स्वामी सिंधु और सब ग्रंथ चैतन्य चैतामी इत्यादि ले जाते थे, रखते थे। भक्ति विनोद ठाकुर उनकी व्याख्या करते थे, उन्हीं के साथ में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। किंतु ये समझना चाहिए जैसे वो नित्य मुक्त थे, वो जगत के कोई व्यक्ति नहीं थे, बिना पढ़े लिखे ही स्कूल और कॉलेजों में ऐसे हो गए। संस्कृत के महापंडित धुरंधर थोड़े दिनों तक किस कहीं पर पढ़ा, तारकेश्वर, और ऐसे धुरंधर विद्वान हो गए। उनकी अंग्रेजी वक्तृता को अंग्रेज लोग, बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर, ये लोग नहीं समझ पाते थे। अभी भी ये तमाल कृष्ण जी और सब हैं, स्वरूप सत्स्वरूप महाराज इत्यादि, वो ब्रह्म संहिता की जो पुस्तक है उसको देखकर कहते हैं कि इतने हाई स्टैंडर्ड की पुस्तक, कुछ समझ में नहीं आता अंग्रेजी उनकी, डिक्शनरी बार बार खोलना पड़ता है।
तीन बार पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है उनका इंग्लिश, इतना हाई इंग्लिश,
इतना हाई स्टैंडर्ड, और बांग्ला भी इतना हाई स्टैंडर्ड का, जो उसमें दांत गनाना बड़े बड़े विद्वानों के लिए बड़ा भारी कठिन। हम लोग ही हिंदी लिखते हैं तो यहाँ के कॉलेजों के प्रोफेसर और सब लोग कहते हैं, महाराज जी आप कैसी हिंदी लिखते हैं, हम लोगों के समझ में नहीं आती। तो प्रभुपाद का स्टैंडर्ड समझो जो कैसा होगा, स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है। वो कहते थे ये परमार्थ की भाषा ऐसे ही होती है, इसे अब अधिक सहज नहीं किया जा सकता। जिसको ऊपर उठना है उठ करके तब समझे, वैष्णवों के संग में रहने से ऐसा होता है। उन्होंने पुरी में, जबकि उन्होंने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया, संस्कृत के वो ज्योतिष के में उनको सरस्वती की उपाधि मिली थी, वो उसमें बंगाल के सब बड़े बड़े ऑथराइज्ड विद्वांस थे, वो सब ज्योतिष विद्या के पारंगत, उन सब लोगों मिल करके ये उनकी उपाधि दी। इसके बाद में कॉलेज में गए तो कॉलेज के प्रोफेसरों से झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा जब तुम पढ़ने आते हो या पढ़ाने आते हो, झगड़ा हो गया। तो प्रभुपाद ने पढ़ना छोड़ दिया जी, इन लोगों के पास में हम क्या पढ़ेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर और घर के लोग ने सोचा जैसे ये तो पढ़ता है नहीं, तो उनको पूरी मिलेगी। तो पूरी में पाठ करते थे सताशम आश्रम में, जहाँ पर कि स्वरूप दामोदर और रघुनाथ जी रहते थे कुटीर निर्माण करके। अब वहाँ पर अब घर पुराने हो गए हैं, आश्रम है, तो वहीं पर उस समय वैष्णवों का जमघट होता था स्वर्गाश्रम के पास में, वही सताशन आश्रम में, जहाँ पर कि आजकल हमारे पूज्य सिद्धांति महाराज जी का मठ है, उसी के बगल में वो था। सातासन रोड उसका नाम ही है। तो वहीं पर इन्होंने चैतन्य चरितामृत पाठ आरंभ किया। तो उसमें जो शब्दों की व्याख्या करते थे, वहां के जितने धुरंधर वैष्णव लोग थे अपने को रसिक कहते थे, प्रभुपाद की भाषा सुनकर व्याख्या सुन करके धीरे 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 विरोधी उठे और उनका प्रतिवाद करना आरंभ किया। भक्त विनोद ठाकुर ने देखा जो सबके साथ में विरोध हो रहा है, तो उनको बुला लिया अपने पास और तब उन्होंने उनको लेकर कहां के राजा, त्रिपुरा के राजा के पास में उनके लड़के को पढ़ाने के लिए वहां पर उनको रख दिया। इसके पहले उन्होंने उनको कुर्मदेव की एक मूर्ति कहीं मिली थी, कुर्मदेव ना नृसिंह देव, उनकी पूजा करने के लिए इनको मंत्र दिया था और महामंत्र स्वयं उनको दिया,
6 साल उम्र में दिया,
6 या 8 वर्ष की उम्र में दिया था। और पूजा करने के सारे मंत्र सब दे दिए थे। और इसके बाद में इनको वहां पर भेजा, वहां पर 4-5 महीने थे। वहां की जितनी बड़ी भारी लाइब्रेरी थी, वैष्णव ग्रंथ उसमें थे, कुछ ही दिनों में उन्होंने सब ग्रंथों को पूरी तरह से देख लिया, पढ़ लिया। और राजकुमार को पढ़ाते थे, राजकुमार पर उसका ऐसा असर पड़ा कि वो गले में माला ले लिया और इनका तिलक देकर के तिलक लगाने लगा और संसार से वैराग्य उसको होने लग गया। और धीरे धीरे हरिनाम में, हरि कथा में उसकी रुचि होने लगी। रानी देख करके बड़ी दुखी हुई और राजा से कहा, यह लड़का बेहाथ हो जाएगा, आपके बाद में क्या होगा, हम लोगों का पिंड कौन देगा, और ये लड़का बैरागी हो जाएगा, किसी काम का नहीं, बिगड़ जाएगा, आप जल्दी से इसको हटाइए। महीना आप 300 रुपया दे रहे हैं, उस समय में, किस समय में, आज से कितना, 100 वर्ष से पहले, 100 वर्ष पहले 1908-09 में, 1900 में, 100 वर्ष करीब पहले, उस समय में 300 रुपया, आप इसको 300 बदले 400 दे दीजिए, किंतु यहाँ से हटा दीजिए, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, लड़के की जरूरत है। इतना दबाव डाला कि अंत में उन्होंने उनको कहा बड़ी नम्रता से, मुझे दुख है कि हमारे परिवार के लोग हमसे सहमत नहीं हैं और बच्चे को आपसे नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसको भक्ति हो जाएगी और इसको वैराग्य हो जाएगा। हम तो परम सौभाग्यवान अपने को मानते हैं कि आपके जैसे व्यक्ति मिले और ये बच्चा पढ़ रहा था, किंतु ये लोग नहीं समझते हैं, इसलिए आपको हम वही महीना देंगे, आप भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास में चलिए। उन्होंने कहा जी हमको पैसे की जरूरत नहीं, बिना पैसे लिए हुए छोड़ करके चले आए। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको एक होम्योपैथिक की दुकान करा दी कि अंग्रेजी दवा की। दोनों के बाद में वो दुकान टोकान सब फेल हो गई। मैं दुकान गिरी करने के लिए नहीं आया। इसके बाद में उन्होंने मायापुरी स्टेट इनके लिए खरीद दिया। ये वहीं पर महाप्रभु का जन्म स्थान था और वहीं पर इनकी देखभाल के लिए इसको लगा देंगे, और ऐसा ही किया। और वहीं पर छप्पर लगाकर गौर विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया पीछे से और छोटी छोटी राधा कृष्ण के शिव विग्रह वहीं पर स्थापित कर दिए और सेवा का भार इन पर दे दिया। बस वहीं समय से उसी समय से उन्होंने बड़े उद्भट दिमाग के नवद्वीप धाम परिक्रमा जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा था उसी के अनुसार में परिक्रमा करने का संकल्प किया। और उसमें जितने कीर्तन वाले दल हैं रामदास बाबा जी इत्यादि के गुरु थे, रामदास के गुरु चरणदास खूब कीर्तन करने वाले, और सब लोगों को निमंत्रण किया। यात्रा के दल भी मंगाए लोगों को आकर्षण करने के लिए, और टेंट वहां पर लगा करके उस भूमि को समतल करके और वहीं पर सब व्यवस्था की और परिक्रमा निकाला। हजारों लोग आए और बस अपने ये कथा धीरे 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 आरंभ किया शुद्ध भगवत भक्ति की बात, और धीरे धीरे प्रचार आरंभ किया। कुछ दिनों के बाद में इन लोगों को बंद कर दिया और अपनी प्रचार वो अपने आप स्वयं जो श्रद्धालु आते थे उनको लेकर परिक्रमा आरंभ किया। धीरे धीरे उन्होंने योग्य नव युवक लड़कों को ब्रह्मचारी और सन्यासी के रूप में ग्रहण किया। छोटे छोटे 16 17 18 वर्ष की उम्र वाले बच्चे, इनका कोमल हृदय और स्वच्छ हृदय रहता, इनको जैसे ट्रेनिंग दी जाएगी ऐसे ही कर। और 60 वर्ष के ऊपर वाले या 50 वर्ष के उम्र वाले वो बूढ़े तोता की समान हैं, जिनको कुछ नया नहीं सिखलाया जा सकता। इसलिए बच्चों को बच्चे प्रभावित होकर के धीरे धीरे आने लग गए और को नई शिक्षा देकर के प्रचार के लिए प्रस्तुत किया। और थोड़े दिनों में ही हम लोगों के गुरुजी नरहरि प्रभु भक्ति विलास तीर्थ महाराज का नाम पूर्व पहला कुंज बिहारी विद्याभूषण हरिदास दास और भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज और वन महाराज, ये सब धीरे 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 गोस्वामी महाराज पीछे बहुत पीछे, ये सब लोग धीरे धीरे अरण्य महाराज, उसमें प्रभुपाद जी या नरहरि प्रभु अर्चन करते और प्रभुपाद कांसर बजाते थे इसी से समझे मायापुर में। ये सब लोग थे और धीरे धीरे प्राचार आरंभ किया। धीरे धीरे त्रिदंड संन्यास की प्रथा दी। आज उन्हीं का फल है विश्व में सर्वत्र चैतन्य महाप्रभु का प्रचार, उनके नाम का और उनके भक्ति का प्रचार है। प्रचार तो हुआ किंतु धीरे 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 भोग विलास और ऐश आराम में और भक्ति दूसरा स्वरूप भी लेना आरंभ कर दिया है। इसलिए इसकी सुरक्षा भी वैसे ही होनी चाहिए। महाप्रभु भक्तगणे वैराग्य प्रधान जहाँ देखे तुष्ट हों गौर भगवान, ये भी याद रखनी चाहिए। किंतु वैराग्य से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। केवल यदि सूखा हुआ वैराग्य रहे और भक्ति का विचार उसमें न रहे तो वो मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य अथवा श्मशान वैराग्य होता है। सबको विचार करके प्रभुपाद जी को उपदेशों को लेकर के हम चलेंगे तो यथार्थ हमारी पुष्पांजलि उनके चरणों में हो। आज उन्हीं का फल है कि कुछ दिनों में ही उन्होंने 1928 से लेकर और 37 कितना होता है, ये 11 वर्ष 10 से 11 वर्षों के अंदर में सर्वत्र प्रचार हुआ। उसके पहले तो वो नींव बनाने में ही लग गया, इतना समय पत्रिकाएं कितनी छापी, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, और संस्कृत में, हिंदी में, बंगला में, अंग्रेजी में, उड़िया में, आसामी भाषा में, सबका। उसका फल हम लोग सहज रूप में पा रहे हैं। उसमें कितना कठोर करके और कितना परिश्रम करके उन्होंने स्थापना किया और उसमें प्रचार में कितनी दिक्कतें थी, कठिनाई थी, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसी से समझो कि उस समय में वृंदावन में ये जो मंदिर हैं, प्रभुपाद के शिष्यों को मंदिरों में नहीं जाने देते थे सर, नवद्वीप में मंदिरों में नहीं जाने देते थे, हैं? क्यों मारा उस समय तुम रहती तो समझती, जाने नहीं देते थे। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले ये किया, भक्ति रूपी लता में जो आगछा कुगाछा थे, आगछा कुगाछा मैंने उसके साथ में पनपने वाले जो शाखाएं ऊपर शाखाएं थी, कुछ शाखाएं थी, उनका छेदन कर दिया। दोनों ही छांट दिया। कैसे छांटा देखो, सबसे पहले उन्होंने गुरु परंपरा दुरुस्त किया। क्या दुरुस्त किया उन्होंने? अब ये आजकल ऐसी हो रही थी, आप कौन से परिवार में हैं, आपकी शाखा क्या है, आप आपका क्या सिद्ध देह है इत्यादि, ये सब प्रश्न होने लगे थे। अरे हमारा परिवार तो गौर परिवार है, महाप्रभु जी के गौर परिवार के ही सब जो कुछ है। उन्होंने क्या किया, जो उपशाखाएं थी उनका छेदन कर दिया, अर्थात जो असिद्ध लोग थे उस परंपरा में उनका नाम काट दिया और ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा और इसके बाद में नारद व्यास, व्यास तक का लिया और व्यास से ले लिया मध्वाचार्य, सुखदेव गोस्वामी को छोड़ दिया। उनका नाम है छोड़ दिया कि यदि वो परम सिद्ध एकदम वैसे हैं, राधा रानी के सुख इत्यादि के हिसाब से रसिक हैं, तो भी हम उनका आदर्श फॉलो नहीं कर सकते, और यदि अद्वैतवाद मिश्र उनका भाव है तो भी हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग का जो आचार्य का कार्य करने वाले हैं शुद्ध रूप में, मध्यम अधिकारी का विचार लेकर के चल कर, जिससे जगत के जीवों का कल्याण हो, तब तो आचार्य उचित इन सब लोगों को ग्रहण किया। विशेष करके इनमें ब्रह्मचारी इत्यादि को उसमें लिया अधिक। जो बहुत दिनों तक गृहस्थ इत्यादि रह करके आए हों उन लोगों का नाम इसमें नहीं दिया, शुद्ध रूप में रहे हों ऐसे ही लोगों का नाम इसमें देखो, देख लेना उसमें सब ऐसा। और शुद्ध रूप में हों उनको वहां से मध्वाचार्य को ले लिया, और मध्वाचार्य के विशिष्ट विशिष्ट कुछ लोगों को लेकर माधवेंद्रपुरी को लिया। माधवेंद्रपुरी को सभी लोग मानते हैं, और माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी जी को लिया, और इसके बाद में ले लिया स्वरूप दामोदर, और उनके बाद में रूप सनातन, इसके बाद में रघुनाथ, जीव गोस्वामी को लिया ना, जीव गोस्वामी और रघुनाथ, इसके बाद में कृष्णदास। अब इन लोगों ने बांट लिया था ये कोई नित्यानंद परिवार, कोई अद्वैत परिवार, कोई गदाधर परिवार, कोई वक्रेश्वर परिवार, कोई कुछ परिवार, कोई लोकनाथ परिवार, सब बांट करके उसके अनुसार में चल रहे थे और अपनी अपनी धारा को ही लेकर के चल रहे थे। मान लिया कि नरोत्तम ठाकुर का बाद में जो चले उनको नरोत्तम परिवार में लिया जाएगा, तो श्यामानंद और श्रीनिवास जी का और जो बीच में रह गए हैं वो सब छूट जाएंगे ना, अपने अपने बस उसी लाइन को लेकर के चलेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा जाए ऐसा नहीं, जहां पर जो वैष्णव जिस परिवार में भी हो, जहां भी हो, यदि सिद्ध महात्मा हुए हैं और पक्के विचार वाले सिद्धांतविद हुए हैं, रसिक वैष्णव हुए हैं, शुद्ध सिद्धांत वाले हुए हैं, तो उनको ले। इस तरह से सभी परिवार इसमें आ जाएगा। और नहीं तो कोई मान लिया कि एक अद्वैताचार्य जी के लाइन में आया तो नित्यानंद प्रभु का छूट जाएगा। तब महाप्रभु से सनातन जी कौन से परिवार में रहेंगे? सनातन कौन परिवार में आएंगे? रूप उन्होंने तो शिष्य किया नहीं, तो उनको छोड़ दिया जाएगा ना, तो रूप का परिवार नहीं और सनातन गोस्वामी का परिवार नहीं, क्योंकि उन्होंने शिष्य नहीं किया और वे समस्त वैष्णव के गुरु हैं, है कि नहीं? रूप सनातन को छोड़कर के कौन ऐसा वैष्णव है जो वैष्णव हो सकता है? अब ये लोग तो बना लिया एक अद्वैताचार्य जी का परिवार, कोई गदाधर का परिवार, कोई अद्वैत वंश, नित्यानंद वंश, वीरभद्र वंश और जाह्नवी वंश की कौन कौन हजार लाख बना लिया। तो इनको हम किस वंश में रखेंगे परंपरा में? सनातन को, रूप को, जीव गोस्वामी को, तो ये सब छूट जाएंगे। इसलिए इन्होंने व्यापक दृष्टि से देखा, इसे ये एक तरह से अपराध हो रहा है लोगों को, जो रूप सनातन जीव गोस्वामी को ये सब लोग बाद दे देंगे, इसलिए हम गुरु परंपरा रखेंगे, शिष्य परंपरा नहीं लेंगे। शिष्य परंपरा का तात्पर्य है एक गुरु का जो शिष्य हुआ, उसका जो शिष्य हुआ, उसका शिष्य हुआ, इसको शिष्य परंपरा कहते हैं। गुरु परंपरा कहते हैं जो सचमुच में गुरु भागवत हो, उसने शिष्य भी नहीं किया तो भी वो जगत गुरु है। चैतन्य महाप्रभु कौन से परिवार में है? इसलिए हरिदास ठाकुर को कौन सा परिवार में लिया जाएगा? तो ये सब लोग बात पड़ जाएंगे। ऐसा सोच करके व्यापक दृष्टि से, सार्वभौम विचार से उन्होंने भागवत परंपरा अथवा गुरु परंपरा, जिसमें ये सब जो महाजन हैं ये सब आएंगे, इस तरह से उन्होंने सब सिद्ध महात्माओं को लिया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद में उन्होंने एकदम कैंची से काट दिया जो इधर उधर में थे, और काट करके क्या किया, इसीलिए ये लोग बिगड़े हुए हैं। कैंची से काट करके अलग कर दिया उपशाखाओं को, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, गोविंद कुंड, वृंदावन इत्यादि में जो ऐसे झूठ मूठ के परिवारों के जो लगे हुए सहजिया लोग थे उनको पैर कैंची काट दिया, और काट करके उन्होंने सिद्ध विश्वनाथ चक्रवर्ती से बलदेव विद्याभूषण को ले लिया, और बलदेव विद्याभूषण के बाद में जगन्नाथ, जिनका जो विचार और सिद्धांत लिया असल में यथार्थ में परमार्थिक जगत में जो इन सिद्धांतों को और विचारों को जो देता है उसी को गुरु रूप में वर्णन, ये प्रभुपाद ने ग्रहण किया। केवल कान फूंक दिया, बस उतना ही तक रख दिया, कोई भी संशय से संबंध नहीं है, धोती और कपड़ा और रुपया ले लिया, यही गुरुत्व नहीं है। इसलिए यद्यपि भक्ति विनोद ठाकुर जी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के मंत्र शिष्य नहीं है, किंतु कैसे शिष्य हैं? विचारों के शिष्य। सब विचार पारमार्थिक, जितना जो कुछ था कृष्ण के प्रति भावना, उपास्य के प्रति भावना, भागवत विचार, रस के विचार, तत्व विचार, ये सब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनसे दिए। शिष्य इसी को कहते हैं शिष्य। आजकल ऐसी बातों कहने वालों को लोग मारेंगे जो अशिक्षित हैं, जो उन विचारों को समझ नहीं पाते हैं, वो लोग विचारों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाए। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसे विचारों को लिया, इनके विचारों को जब गहराई से देखेंगे तो देखेंगे ठीक है। गौर किशोर दास बाबा जी, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर को उन्होंने ग्रहण किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी इनके दीक्षित मंत्र द्वारा नहीं थे, समस्त भावों को और विचारों को ग्रहण किया। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षित शिष्य नहीं है, कैसे हैं? भाव विचार इत्यादि जो कुछ हुआ भक्ति विनोद ठाकुर से, और अपने परमार्थिक जीवन का गठन किया। यदि जगन अच्छा, और वो लोग सब वहीं पर कट गए, कौन सिद्ध कृष्णदास बाबा जी इत्यादि जिनको वो रखते हैं, सब वहां पर उनको काट करके अलग कर दिया। इसलिए वो लोग तब से इनके प्रति विरुद्ध आचरण करने लगे बाबा जी लोग सब। उन्होंने पूछा जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती किसके शिष्य हैं, उन्होंने संन्यास किसने लिया, और सनातन गोस्वामी जी जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? हम लोगों के संप्रदाय में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वरूप दामोदर के बाद में सभी लोग सफेद कपड़े पहनते, और इन्होंने लाल कपड़ा पहन लिया और दंड ले लिया, ये कैसे हुआ? अच्छा, लाल कपड़े पहनने से और सफेद कपड़े पहनने से भक्ति का क्या संबंध है? है कुछ संबंध? किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नुना जय कृष्ण तत्ववेत्ता तो गुरु हो जाता, वैष्णव की तो बात ही क्या। इन्होंने देखा कि हम सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी और ये जो महान पुरुष हो गए रूप इत्यादि कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि, इनके वेश ग्रहण करने के योग्य नहीं है, इसलिए हम लोग साधारण सन्यासी के रूप में रहेंगे, बाबा जी परमहंस का परिचय हम नहीं देंगे, ये लोग तो परमहंस थे, हम परमहंस का परिचय नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? हम चारों वर्णाश्रमी में से एक वर्णाश्रमी के अंतर्गत में रह करके हम सन्यासी ब्रह्मचारी के रूप में रहेंगे, परमहंस वेश नहीं देंगे। वो वेश है कैसा है? परमहंस, इसलिए वो हमारे सिर पर रहे प्रचार करने के लिए और साधारण अधिकारियों के लिए, यही अच्छा है। और नहीं परमहंस वेश लेंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे तो रूप सनातन के चरणों में अपराध हो जाएगा, इसलिए वो वेश नहीं लिया। लोग कहते हैं कि जिसको तिसको इन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया और यज्ञोपवीत दे दिया प्रभुपाद जी ने। हमारे गुरु जी कहते थे जो मूर्ख हैं ये सब, अनड्वान। अनड्वान माने क्या है? अनड्वान कहते हैं सांड को,
निद्रा भोजन है बड़े से भोजन
जिनका गोबर से कंडा नहीं बनता, कैसे? बरसात के समय में एकदम पतला जिनकी टट्टी होती है जिससे कंडे भी नहीं बने, ऐसे अनड्वान है, बुद्धि नहीं। ये लोग सबको गोपी मंत्र देते हैं, सबको जो आ गया जैसा भी गोपी मंत्र, गोपी मंत्र कितना ऊंचा है। अरे हम तो उनको अभी ब्रह्मचारी बना करके साधारण रूप में यज्ञ पवित देते हैं, ये तो वर्णाश्रम धर्म है, और वो तो वर्णाश्रम धर्म नहीं, वो तो परमहंस वेश है। तो तुम परमहंस वेश दे करके ये अपराध अन्याय कर रहा है कि हम साधारण लोअर डिग्री के ब्रह्मचारी बना करके उनको पढ़े, ब्रह्मचर्य से रहे, सम दम तितिक्षा इत्यादि की शिक्षा दें, ये कौन सा ठीक है उपयुक्त। इसलिए हम देते हैं कि सम दम तितिक्षा हो करके पहले सिद्धांत को समझो, जो भगवत तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, नहीं? ये समझ करके माया से दूर रहो, कनक कामिनी और प्रतिष्ठा से दूर रहो। हम ये प्रारंभिक शिक्षाएं दे रहे हैं, गोपी भाव तो बहुत दूर, अभी ये केवल समझो जी मैं कृष्ण दास हूं बस। इसलिए कृष्ण परक नाम सबको देते हैं और दे करके सबको हरिनाम करे, बस यही कर। और तुम लोग जगत का जंजाल बन करके सब लोगों को जो ही आ गया और उन्हीं को गोपी भाव दे दिया, और उनको मैं गोपी हूं, मैं गोपी हूं, सिद्ध स्वरूप मेरा है, और कुछ दिनों के बाद में वो और पतित जघन्य होकर के जगत का जंजाल बन जाता है। भरी सभा में मेदिनीपुर में गुरु महाराज जी भाषण दिया था, बड़ा प्रभावशाली भाषण। तो गुरु, हमारे गुरु महाराज जी प्रभुपाद के विचारों को चारों तरफ में प्रसार करने वाले बड़े साहसिक रूप में निर्भीक सत्य के वक्ता थे हमारे गुरु जी। और लोग इतनी साहस के साथ में निर्भीक होकर के प्रभुपाद के विचारों का कोई भी नहीं ऐसा कर सका, सब लोग डरते थे समाज से, समाज के साथ में मिल करके चलने की चेष्टा करते, हमारे गुरु जी ने कभी भी ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद जी जैसे ही एकदम निर्भीक सत्य के प्रचारक थे, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा ही किया। अब वो श्लोक छट गए और उसके बाद में गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जगन्नाथ दास जी महाराज के शिष्य में से थे, उनके शिष्य परंपरा, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर के विचारों को लिया और उनसे फिर आए प्रभुपाद जी आए। लोग कहते हैं उन किनके शिष्य थे, अरे यदि गौरकिशोर बाबा जी को तुम मानते हो, जगन्नाथ दास बाबा जी को मानते हो, तो फिर ये किस धर्म है तुम लोग समझ नहीं पाता। तो लाल इनका कपड़ा है, उनका तो सफेद कपड़ा था, तो लाल कपड़े में शिष्यत्व है ना सफेद कपड़े में शिष्यत्व है, उनके समझ में नहीं आता। इस तरह से इन्होंने, इनकी कोई परवाह नहीं की, एकदम परवाह नहीं की, इस भागवत परंपरा का सबसे पहले स्थापना की। और यही रोज रोज हम लोगों में कृष्ण है ते चतुर्मुख, हम कृष्ण
सेवनमुख,
ये और संस्कृत में कृष्णो देवर्षि बादरायण संग कान इत्यादि प्रतिदिन ये सब होता है। उसी समय से परंपरा ही उन्होंने एकदम, उसमें हमारे जितने बिखरे हुए आचार्य थे सब बड़े बड़े लोगों को, सिद्ध महापुरुषों को उसमें एकत्र करके ले लिया। हम लोग सब गौर परिवार के हैं, यदि आज प्रभुपाद नहीं होते तो आज विश्व भर में महाप्रभु जी का जो नाम गीता भागवत की चर्चा हो रही है ये सब होता कहीं। ये मथुरा इत्यादि में जो प्रचार हुआ ब्रज में या बाहर में जहां जहां आज हो रहा है, नाम निशाना तक नहीं रहता, मिट गया होता। इसलिए प्रभुपाद का जगत ये ऋणी रहेगा, प्रभुपाद जी का, उनके प्रचार का। कहीं से बड़े बड़े धनी लोगों को उन्होंने नहीं पकड़ा, एक एक पैसा सबसे लिया द्वार द्वार जाकर के भिक्षा के रूप में। कैसे हम लोग गौड़ीय मठ से आ रहे हैं, क्या करते, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, अब धीरे धीरे अपने विचारों को उनसे कहते थे, वो आदमी प्रभावित हो जाता, साधारण आदमी से लेकर के सभी लोग उनसे प्रभावित होते। हमारे गुरु महाराज जमींदार के इतने बड़े भारी लड़के, उनको लकड़ी का एक बक्सा दे दिया, उसमें ताला डाल दिया, एक छेद रख दिया, उसको लेकर के ये ट्रेन में, ट्राम में, बस में, बाजार में, मार्केट में लेकर के जाते और प्रत्येक श्रेणी के लोगों से मिलते और उनसे बातचीत का सुयोग होता। इस तरह से कुछ दिनों में ही चारों तरफ में प्रचार हुआ। आप लोग भी ऐसा करेंगे, पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा तो जितना चाहेंगे आपके पीछे दौड़ेगा। ऐसा प्रचार हो धीरे धीरे, जहाँ पर अभी प्रचार नहीं हुआ है और भक्ति जहाँ मुरझा रही है वहाँ पर ऐसे शुद्ध रूप में प्रचार किया जाए। महिलाएं भी चुपचाप न बैठी रहें, जो विचार सब सुन रही हैं वो एक दूसरे को संक्रमित करें इंजेक्शन के माध्यम से। ये विचार अच्छा है, भगवान का नाम करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, चाहे वो विवाहित हो अविवाहित हो। उन लोगों में भी, गृहस्थ भक्त लोग भी, त्यागी लोग भी, हम पढ़े लिखे नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसा नहीं। हरिदास ठाकुर MBA PhD पढ़े लिखे थे, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे लोगों को इधर लिया, गौरकिशोरदास महाराज कौन से पढ़े लिखे थे MBA PhD, किंतु अपने आचरण से पक्के थे एकदम, अपने सिद्धांत के बड़े तीव्र मेधा थी। इसलिए बड़े बड़े विद्वान लोग, जो बड़े बड़े पाठक हैं, उनको भी जो गलती होती थी उसको सुधार देते थे। इस तरह से हम लोग भी जो सुनेंगे, आप लोग जो सुन रहे हैं ये सब तत्व, अभी जो हम लोग बृहद भगवतामृत और सब भागवत इत्यादि से कहते हैं, लोग कहाँ से ये सब सुनने का उनको अवसर, इन सब विचारों को सुन करके और उनमें लोगों में ले जाए। जीवन का ये सब कर्तव्य होना चाहिए, प्रति के साथ में हरिनाम करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे, सिद्धांत सुनेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे, तो इससे प्रभुपाद जी प्रसन्न अधिक होंगे, वैराग्य हो सब।